नमस्कार, प्रिंट पॉड में आपका स्वागत है। मैं शिव पांडे आज आपको बता रहा हूं कि कैसे अपने पैरों पर खड़े होने की चाह ने दो टीनेज बहनों को जयपुर से भागने पर मजबूर कर दिया, और इससे पहले कि पुलिस उन्हें खोज निकालती, कैसे उन्होंने अपनी ड्रीम जॉब खोज ली। सुनिए बिस्मी तस्कीन की रिपोर्ट। उन दोनों बहनों की उम्र 16 और 17 साल थी, और एक वकील की इन बेटियों ने अच्छे अंकों से अपनी परीक्षा पास की थी, लेकिन उनके मन में तो उद्यमिता के सपने थे। फरवरी में दोनों अपने स्कूल से भाग निकली और 574 किलोमीटर दूर लखनऊ के लिए ट्रेन पकड़ ली। करीब 56 दिनों के बाद पुलिस द्वारा ढूंढ निकाले जाने से पहले उन्होंने एक निजी फर्म में अपने लिए काम खोज लिया था और 15% कमीशन पर पेस्ट रिपेलेंट बेचने लगी थी। ये जयपुर स्थित अपने घर से भागने का उनका तीसरा और एकमात्र सफल प्रयास था, और खोज निकाले जाने से पहले करीब 2 महीने तक वो अपने परिवार की नजरों से बची रहीं। इन लड़कियों ने 3 फरवरी को यह कदम तब उठाया जब उनके पिता ने उन्हें स्कूल छोड़ा। उन्होंने टीचर से झूठ बोला कि घर में कोई अस्वस्थ है, और फिर स्कूल से भाग गईं। लड़कियों के लापता होने के बाद वकीलों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया, और त्वरित पुलिस कार्रवाई पर जोर देते हुए उनका पता लगाने के लिए एक विशेष जांच दल यानी SIT बनाने की मांग भी की। जयपुर पुलिस ने 7 टीमों का गठन किया और लखनऊ पुलिस के साथ मिलकर काम किया। गहन जांच पड़ताल और करीब 1000 घंटे के CCTV फुटेज खंगालने के बाद पुलिस उनका पता लगाने में सफल रही। लड़कियों के 50 वर्षीय पिता ने दीप्रिंट को बताया कि सुबह मैंने उन्हें स्कूल छोड़ा, लेकिन जब वे नहीं लौटी तो हम घबरा गए। लड़कियों ने बाद में अपने फोन बंद कर लिए थे, और थोड़ी देर इंतजार के बाद पिता ने महेश नगर पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366A के तहत शिकायत दर्ज कराई। इस बीच लड़कियां लखनऊ के लिए एक ट्रेन में सवार हो चुकी थी। उनके पास करीब 7000 रुपए नकद थे, और शहर में उनका कोई परिचित नहीं था। यहां तक कि उन्होंने टिकट भी नहीं लिया था। उन्हें जल्द ही यात्रा टिकट परीक्षक यानी TTE ने पकड़ लिया, जिसने उन पर 2500 रुपए का जुर्माना लगाया। वे 4 फरवरी को लखनऊ पहुंची और एक ऑटो रिक्शा में सवार हो गईं, और फिर अपने स्कूल की एक पूर्व संस्कृत टीचर को फोन करके कहा कि उनकी दादी की तबीयत खराब है, और 30000 रुपए की उन्होंने मांग की। 70 साल की उनकी शिक्षिका ने तुरंत स्कूल प्रशासन और पुलिस को सूचित किया। हालांकि इससे पहले कि उनका पता लगाया जा सकता, लड़कियों ने अपना ठिकाना बदल लिया और 25 मार्च तक फिर गायब रही। लेकिन ये कॉल उम्मीद की पहली किरण थी। पड़ताल में पता चला कि फोन लखनऊ से आया था, और इस तरह पहली बार उनकी लोकेशन का पता लग पाया। DCP जयपुर साउथ मृदुल कछावा ने दीप्रिंट से बातचीत में कहा कि एक बार यह पता लगने पर कि वो लखनऊ में हैं, हमने टीमों को तैनात करना शुरू कर दिया। लड़कियों ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया था और अपनी मर्जी से गई थी, इसलिए उनका कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। लखनऊ में 100 से अधिक अधिकारियों की तैनाती के साथ 7 टीमों का गठन किया गया, और अतिरिक्त पुलिस बल दिल्ली, कानपुर और कोटा भेजी गई। उधर नौकरी की तलाश में 4 दिनों तक पेइंग गेस्ट के रूप में रहने वाली इन बहनों को सेल्स जॉब के लिए लड़कियां खोजने वाले विज्ञापन का एक होर्डिंग दिखा, और वे इनमें से एक प्रोजेक्ट में शामिल हो गईं। नौकरी के साथ ही उन्हें कंपनी की तरफ से रहने की जगह भी मिल गई। उनकी माँ ने बताया कि अपनी पहचान छिपाने के लिए वे हर समय अपना चेहरा ढके रहती थी, लेकिन आखिरकार 25 मार्च को पुलिस को 15 मार्च के एक CCTV फुटेज में लड़कियां नजर आ गईं। स्थानीय व्यापारियों से संपर्क करने पर जांचकर्ताओं ने लखनऊ के गुंडवा इलाके में ग्रो अप ग्रुप ढूंढ निकाला। इसी फर्म ने इन दोनों बहनों को नौकरी पर रखा था। आखिरकार 30 मार्च को लड़कियों की पहचान हो गई। पहचान की पुष्टि होने के बाद इन बहनों को जयपुर वापस ले आया गया, लेकिन इसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस को दिए बयान में लड़कियों ने कहा कि वे घर के खराब माहौल से बचने के लिए भागी थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उनका कहना है कि घर का माहौल उनके विकास के लिए ठीक नहीं था। पिता ने लड़कियों की कस्टडी की मांग करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में दीवानी रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। लड़कियों को पिता की कस्टडी में देने के अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि वो अपनी मर्जी से गई थीं, और माता पिता उन्हें लखनऊ वापस भेजने पर सहमत हैं। कोर्ट ने कहा कि लड़कियों ने कहा है कि अब माता पिता उनके सपनों को पूरा करने और उन्हें लखनऊ ले जाने पर सहमत हो गए हैं, जहां दोनों लड़कियां रहना और काम करना चाहती हैं। अदालत ने उनका पता लगाने के लिए पुलिस की तरफ से किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट को आश्वासन भी दिया है कि लड़कियों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। याचिकाकर्ता के इस आश्वासन पर ही लड़कियों को उन्हें सौंपा जा रहा है। माता पिता को संदेह है कि उनकी बेटियों को पूर्व टीचर्स ने बहकाया था, जिसमें 70 वर्षीय वो बुजुर्ग भी शामिल हैं जिनसे उन्होंने लखनऊ से संपर्क किया था। पिता ने टीचर के बेटे के शामिल होने का आरोप लगाते हुए कहा कि टीचर ने उनका ब्रेन वॉश किया था। इसमें क्या उद्यमिता है, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और पेस्ट रिपेलेंट बेचने लगी हैं। वहां उनका शोषण हो रहा था, ये एक लेबर रैकेट था। क्योंकि वे कम उम्र की हैं इसलिए न तो ज्यादा पैसे मांगेंगी और सवाल भी कम पूछेंगी। हालांकि डीसीपी कछावा ने इन आरोपों से इनकार किया है। डिप्रिंट से बातचीत में 70 वर्षीय शिक्षिका ने कहा कि मुझे शिक्षण का 3 दशकों से अधिक का अनुभव है। लॉकडाउन के दौरान वे मेरे संपर्क में थी, मैंने संस्कृत में भी उनकी मदद की है। सभी टीचर चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छा प्रदर्शन करें और हम उन्हें महत्वाकांक्षी बनाने को तत्पर रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें अपने घरों से भागने के लिए कहते हैं। जब उन्होंने मुझसे संपर्क किया तो मैंने तुरंत पुलिस को बताया। अपने बेटे के बारे में शिक्षिका ने कहा कि वो 50 साल का है जिसकी 22 साल की अपनी खुद की बेटी है। वो उन्हें जानता तक नहीं है। वो कई सालों तक रियाद में था और 7 साल पहले लौटा है। मैं इन सब में अपने बेटे का नाम आने को लेकर काफी परेशान। पुलिस ने पुष्टि की कि लड़कियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया था और कहा कि उनके नियोक्ता ने उनका ठीक से ख्याल रखा था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि उसे लखनऊ से लाया गया था और पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। उसके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला और लड़कियों ने भी उसके पक्ष में बयान दिया था। हालांकि पुलिस अभी भी नियोक्ता पर नजर रखे हुए है। राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रमुख सुमन शर्मा ने दिप्रिंट से बातचीत में कहा कि लगता है कि लड़कियों को इंटरनेट ने गुमराह किया था। उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल को उनकी मां उन्हें लखनऊ लेकर जाएंगी। उन्होंने वहां 6 महीने में से 2 महीने की ट्रेनिंग पूरी कर ली है। शर्मा ने दावा किया कि दोनों लड़कियां बेहद महत्वाकांक्षी हैं, साथ ही उन्हें जमीनी हकीकत की भी समझ नहीं है। इंटरनेट और गूगल के अत्यधिक उपयोग ने उन्हें दिग्भ्रमित कर दिया है। दिप्रिंट ने 3 अप्रैल को जब लड़कियों के घर का दौरा किया तो उनके माता पिता ने बताया कि वे ऊपर के कमरे में अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। उनकी 2 बड़ी बहनें हैं जिसमें से एक 25 वर्ष की है और विवाहित है और दूसरी 22 वर्षीय आयुर्वेद की छात्रा है। उनका 13 साल का एक छोटा भाई भी है। 22 वर्षीय बहन ने इन दावों को खारिज कर दिया कि उनके घर का माहौल खराब है और यहाँ उनका ठीक से विकास नहीं हो सकता। उसने कहा कि 16 वर्षीय बहन ने 10वीं कक्षा में 96% अंक हासिल किए थे और 17 वर्षीय ने 93% अंक पाए। यदि घर का माहौल इतना ही खराब और नकारात्मक होता तो उन्होंने इतने शानदार अंक कैसे हासिल किए। परिवार के मुताबिक 16 साल की लड़की ने पहले मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में बैठने के बाद IAS अधिकारी बनने की इच्छा जताई थी। वहीं 17 वर्षीय जो रविवार को ही 18 साल की हुई है, एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती है। जयपुर पुलिस के सूत्रों ने बताया कि लड़कियों के घर से भागने का ये 3रा प्रयास था। अधिकारी ने कहा कि उन्होंने अक्टूबर में योजना बनाई थी लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाई। 3 नवंबर को फिर वे रेलवे स्टेशन पहुंची लेकिन ट्रेन में नहीं चढ़ सकी। पुलिस ने कहा कि लड़कियों ने लखनऊ जाने से पहले एक मंदिर जाकर दर्शन किए थे। DCP कछावा ने बताया कि उन्होंने चिट बनाई और उन पर चेन्नई, मुंबई और लखनऊ लिखा, फिर एक चिट निकालकर लखनऊ जाना चुना। इस तरह उन्होंने तय किया कि उनकी मंजिल कहाँ होगी। साथ ही जोड़ा कि लड़कियों ने फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल कर ऑनलाइन नौकरी की तलाश की। ये पूछे जाने पर कि क्या वो घर से कपड़े लेकर गई थी, मां ने कहा कि उन्होंने अपने बैग में 1-2 जोड़ी कपड़े रखे थे। हमें उनकी योजना की भनक तक नहीं लगी, दोनों बहुत ही करीब हैं। माता पिता ने बताया कि बेटियों ने कभी भी उनसे ये नहीं बताया कि वे उद्यमी बनना चाहती हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या लड़कियों ने अपने घर से भागने पर माफी मांगी है, मां ने कहा कि अभी उन्होंने विद्रोह वाला रुख अपना रखा है। उन्हें लगता है कि सेल्स ट्रेनिंग का मतलब है एक व्यवसाय की नींव रखना। हम उन्हें लखनऊ ले जाएंगे और खुद देखेंगे कि ये सब क्या है। पिता ने कहा कि हमने उन्हें उनकी स्पेस दी है। सुनने के लिए धन्यवाद। हम कल फिर हाजिर होंगे प्रिंट पॉड के नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।